ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाधा नहीं बल्कि एक पुल की तरह होना चाहिए। कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक हित के लिए भारत अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षित टेक्नोलॉजी और इसकी जिम्मेदारी से किए गए इस्तेमाल के लिए संतुलन नियमन की जरूरत है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। शांति और सुरक्षा के खतरों पर उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर साइबर, समुद्र और अंतरिक्ष संघर्ष के नए मैदान के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम वैश्विक भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमें मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने दिखाया है कि सतत विकास हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सफलता के अनुभव को ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन से इतर न्यूयॉर्क में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति तो लैम को नेतृत्व की बड़ी भूमिका संभालने पर बधाई दी और भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सहयोग जारी रखने की उम्मीद जताई। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच अटूट आपसी विश्वास, समझ और साझा हितों द्वारा चिन्हित गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों और बढ़ते रणनीतिक संबंधों के महत्व की पुष्टि की। पिछले महीने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन की भारत यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस महीने की शुरुआत में टाइफून यागी से हुए नुकसान और क्षति पर वियतनाम के साथ अपनी सहानुभूति और एकजुटता दोहराई। राष्ट्रपति और महासचिव तो लैम ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत द्वारा आपातकालीन मानवीय सहायता और आपदा राहत की समय पर आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कल हरियाणा के टोहाना और जगाधरी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। टोहाना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना चिंताजनक है। श्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सिख समुदाय का अपमान करने और कांग्रेस पार्टी पर अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों की जमीन छीनी गई थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में कल राज्य के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की 27,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में कार्यरत सरपंच और उप सरपंच के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इनका पारिश्रमिक दोगुना करने के फैसले को कल राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने खेल परिसर की स्थापना के लिए क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को बांद्रा में 2,000 वर्ग मीटर का भूखंड पट्टे पर देने को भी मंजूरी दी है। ये भूखंड पहले सुनील गावस्कर को पट्टे पर दिया गया था जो परिसर विकसित करने में विफल रहे। 14,886 करोड़ रूपये की लागत से शिरूर से छत्रपति संभाजीनगर तक एक नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसे अब आगे की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।